Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. Is Upanishad ke 6 prakaranon mein se चार प्रकरणों का विचार हो चुका है. पंचम प्रश्न का प्रकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ. चतुर्थ प्रकरण से मुंडकोक्त पराविद्या का व्याख्यान प्रश्नोपनिषद में होता है. पराविद्या है तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभूति का नाम है पराविद्या, क्योंकि मुंडक उपनिषद में पराविद्या का लक्षण ही बताया अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते. पराविद्या वो है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो. तो पराविद्या अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति है. वह नित्य प्राप्त परमात्मा की ही प्राप्ति कराती है और नित्य प्राप्त की प्राप्ति का स्वरूप होता है उसके अप्राप्ति की भ्रांति की निवृत्ति. तो परमात्मा प्रत्येक का स्वरूप होने से प्रत्येक को आत्मरूप से उपलब्ध ही है, प्राप्त ही है, किंतु अनादि अविद्या से ये भ्रांति हो रही है कि हम ब्रह्म नहीं है. ये जो भ्रांति है ब्रह्म भिन्नता की, उसकी समूल निवृत्ति तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान से होती है, भ्रांति की निवृत्ति. और भ्रांति की निवृत्ति होने पर ब्रह्म जो सबका स्वरूप है, जिसकी भ्रांति निवृत्त हो गई, उसके आत्मरूप से उसे हमेशा फिर स्फुरित होता रहता है. मैं के रूप में उसे कभी विस्मृत नहीं होता. विस्मृति ही अप्राप्ति थी. उस विस्मृति को हटा दिया तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ने, पराविद्या ने. तो फिर निरंतर स्मृति बनी रहती है अपने ब्रह्म भाव की, ब्रह्म स्वरूपता की. यही वो ब्रह्म की प्राप्ति है, वो पराविद्या करती है. तो वो जो पराविद्या है जिस तत्त्वमसि वाक्यार्थ से उत्पन्न होती है, वाक्य से उत्पन्न होती है, उस वाक्यार्थ का ज्ञान तत्पदार्थ त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक चतुर्थ प्रकरण में बताया गया. गार्ग्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपलाद जी ने त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन पूर्वक शोधित तत्पदार्थ के साथ शोधित त्वम पदार्थ का अभेद ज्ञान रूपा पराविद्या का निरूपण किया. उसका फल भी बताया, दृष्ट फल जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल विदेह मुक्ति. इस पराविद्या के अधिकारी माने जाते हैं जिनके अंदर उत्कृष्ट साधन चतुष्टय हैं, वे नित्यानित्य वस्तु विवेक भी, वैराग्य समाधि षट संपत्ति तथा मुमुक्षा यह उत्कृष्ट कोटि के जिसके बुद्धि में विद्यमान है उसे ही गार्ग के प्रश्नों का जो उत्तर आचार्य पिपला जी ने दिया, उन उत्तर वाक्यों को सुन करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है। जैसे गार्ग को हुआ और उसके अब्रह्मता की भ्रांति की निवृत्ति होती है, जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति पराविद्या का फल उसके जीवन में देखने को मिलता है। जो जिज्ञासु तो है लेकिन साधन चतुष्ट है, उतना उत्कृष्ट नहीं है, मंद वैराग्य है, वैराग्य की कमी है, तो उसे इन प्रश्नों का उत्तर सुनने मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा तत्वबोध नहीं हो पाएगा। लेकिन श्रुति चाहती है उसका भी कल्याण हो, जिज्ञासु तो ही है लेकिन वैराग्य की कमी के कारण चित्त में जिन पदार्थों के प्रति राग है उन पदार्थ विषयक चिंतन होता है, उन पदार्थों का जब तक पूर्ण रूप से दोष दर्शन नहीं होगा तब तक उन पदार्थों से मन का निकलना भी असंभव होगा, राग हट नहीं सकता। राग निवृत्ति का उपाय जिस पदार्थ में आपका राग है उस पदार्थगत दोष दर्शन को ही कहा गया है। राग निवृत्ति का उपाय है दोष दर्शन। और मान लो किसी को ब्रह्मलोक के पदार्थों के प्रति राग है, वो ब्रह्मलोक के पदार्थ यहां आपको इंद्रिय से गृहित नहीं होंगे, शास्त्र बताता है उन्हें श्रोतव्य कहा जाता है, और जब शास्त्र के द्वारा सुने हुए ब्रह्मलोक के पदार्थों का उनमें शोभन बुद्धि होकर के राग चित्त में होगा उन पदार्थ विषयक, तो शास्त्र में जैसे ब्रह्मलोक का वर्णन किया है संसार में सबसे विकसित पूर्ण विकसित लोक ब्रह्मलोक है, ऐसा शास्त्रों ने बताया है, वहां विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पूर्ण विकास हो चुका है, इसलिए नासा आदि जैसे संस्थान ब्रह्मलोक में नहीं है कहीं शोध करने के लिए, वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिकों के लिए कोई ऑफिस हो, सारा हो, कुछ न कुछ शोध करते ही हो विकास के लिए, ऐसा वहां है ही नहीं। जितना विकास संभव है संसार में वो वहां हो चुका है, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर शोधशालाओं की भी आवश्यकताएं नहीं है। तो वहां इतना विकास है कि वहां पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति सत्य संकल्प होता है, वहां ऑटोमेटिक गाड़ियां भी नहीं है, उसके लिए भी तो आपको रिमोट आदि कुछ तो ये करना ही पड़ेगा ना, वहां आपका संकल्प ही आपको जहां ले जाना जाना चाहते हो वहां पहुंचा देता है, विमान आदि पकड़ने की जरूरत नहीं है, संकल्प कर लिया वहां पहुंच जाता है, इसलिए एक्सीडेंट भी वहां नहीं होता है। कोई आपके आपसे अलग दूसरा कोई वाहन हो, आपस में टकरें, कहीं कुछ हो जाए और उसमें इंजन में कुछ गड़बड़ी हो जाए, तब तो एक्सीडेंट आदि की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन वहां केवल आपका संकल्प हो जाए तो संकल्प मात्र से आप वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, समय भी संकल्प करने की देर है, बस संकल्प हुआ पहुंच गए। आपको संकल्प हुआ वहां के, वहां बताया गया कि बड़े बड़े दो सर हैं, सरोवर हैं, जैसे मुंबई के लिए पानी सप्लाई के लिए अलग अलग लेक है ना, ऐसे वहां दो लेक हैं, सरोवर हैं, और वहां ऐसा पानी नहीं है बारिश का एकत्रित हुआ हुआ, वहां ऐसा अमृत है, रस है, रस के सरोवर है, उसको आप थोड़ा सा पी लो तो आनंद में हमेशा रहते हैं, फिर कोई विक्षेप चित्त में होता ही नहीं है। मान लो कि आप जहां ब्रह्मलोक में जाने के बाद आपका आवास स्थान उस सरोवर से दूर होगा तो वहां जाकर के लाना पड़ेगा आपको वह रस, ऐसा नहीं, बस आपको संकल्प हो जाए कि 50 ml वो रस हमको पीना है, तो अच्छे रत्नजड़ित सोने के ग्लास में उस सरोवर से आपने जितने मात्रा के रस का संकल्प किया उतना वो रस उस सोने के ग्लास में भरा हुआ आएगा और आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, बराबर आपके मुंह में वो ग्लास लग जाएगा और जितनी मात्रा से आप सुखपूर्वक पी सकते उतनी मात्रा में वो झुकेगा ठीक से आप, और फिर धो करके रखना पड़ेगा ऐसा भी नहीं, वो अपने आप चला जाएगा वहां से धो करके जहां उसको रहना है वहां होगा। सब काम संकल्प से होते हैं वहां के, और वहां भोगों में न्यूनाधिक्य नहीं है, रहने की व्यवस्था भी आप जैसा चाहेंगे ऐसी संकल्प मात्र से होती है, भोग भी सबको एक जैसे हैं, ब्रह्मा जी को भी जो खाने पीने को वहां मिलता है वही वहां पहुंचे हुए प्रत्येक नागरिक को मिलेगा, इन्हें अलग अलग रसोईया बन रही हो का मतलब पूर्ण विकास हो चुका है वहां पर, ऐसा पूर्ण विकसित लोक है ऐसा शास्त्र बताता है। तो ये सब सुनकर के जाने की इच्छा हो रही कि नहीं वहां, वैराग्य उसके प्रति, तो वैराग्य है तो चले हमारे साथ हरिद्वार, यहां के वस्तुओं के साथ ही वैराग्य नहीं है तो वहां के ये सब सुन करके, तो ऐसा वो वहां का दृश्य है, उन सब दृश्यों को सुन करके शास्त्र से जिनके मन में आ जाए कि हमें वो ब्रह्मलोक जाना है तो ब्रह्मलोक के प्रति राग चित्त में हो जाए, उस राग निवृत्ति का उपाय क्या है, फिर मान लो कि ब्रह्मलोक से नीचे वाले जो लोग हैं वहां तक का तो आपका वैराग्य है लेकिन ब्रह्मलोक के प्रति वैराग्य नहीं है, राग है, वो राग चित्तगत जो है परा विद्या जिन उपनिषद वाक्यों से चित्त में उत्पन्न होती है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का वृत्ति परा विद्या है, यह जिन वाक्यों से उत्पन्न होनी है उन वाक्यों को सुनने के बाद भी, उन वाक्यों का अर्थ समझ में आने के बाद भी वो वृत्ति बनती नहीं है और बन भी जाए तो टिकती नहीं है। वो राग उस वृत्ति को चित्त में टिकने नहीं देता, तुरंत हटा देता है। ये प्रतिबंधक माना जाता है ज्ञान की उत्पत्ति में राग। और ये ऐसा राग संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति जिनके चित्त में है उन्हें कहा जाता है मंद वैराग्यवान। और वो मंद वैराग्यवान निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का श्रवण करने के बाद भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक पराविद्या से वंचित ही रहता है, नहीं हो पाता ब्रह्म साक्षात्कार। तो उसे भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए ऐसा श्रुति चाहती है। श्रुति को शंकराचार्य जी ने कहा कि ये जैसे माता पिता किसी भी बच्चे का कभी अहित नहीं चाहते, अपने बच्चों का हित ही चाहते हैं। और वेद तो जिज्ञासुओं का उतना ही चाहता है। मान लो एक बच्चे के हजारों माता पिता जितना हित चाहते हैं, उससे भी ज्यादा हितैषी वेद आत्मजिज्ञासुओं का है। तो वेद देख रहा है कि जिज्ञासा तो है ही है, लेकिन चित्त में वैराग्य की थोड़ी कमी है, तो उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी भी जिज्ञासा पूरी हो जाए, उसे भी तत्वबोध हो जाए। इस उद्देश्य से जिसके प्रति राग है वह राग निवृत्त करा करके ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सकती है। और यहां से ब्रह्मलोक के दोष दिखते नहीं है, जब शास्त्र प्रमाण से ही शोभन बुद्धि हुई है तो शास्त्र दोष वर्णन कर भी ले तो शोभन बुद्धि सहसा नहीं जा पाती विवेक की कमी होने के कारण। तो फिर क्या करना होगा कि उसे तीव्र राग जिन पदार्थों का बुद्धि में बैठता है उन पदार्थों की जब उपलब्धि होगी तब प्राप्त पदार्थ विषयक राग नहीं होता। प्राप्त पदार्थों में इच्छा हमेशा होती है अप्राप्त पदार्थ की, प्राप्त पदार्थ में फिर प्रत्यक्ष देखेगा अनुभव करेगा वहां भी जो विद्यमान दोष हैं उन दोषों को, तो ब्रह्मलोक के प्रति भी विरक्त होगा। और जब वहां पहुंचने के बाद वहां के दोष दिखेंगे और उनके प्रति भी वैराग्य बुद्धि में आएगा, तो निकृष्ट लोगों के प्रति वैराग्य तो था ही, खाली ब्रह्मलोक के विषयों के प्रति आसक्ति थी, वह ब्रह्मलोक के विषय प्राप्त हो गए ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद यदि, तो फिर उनके प्रति भी वैराग्य होगा। तो अब वैराग्य होने के कारण संसार के हरेक वस्तु के प्रति ब्रह्म विद्या धारण करने योग्य अंतकरण बना, तो वहां ब्रह्म ज्ञान होगा। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी से वेदांत स्वाध्याय करके और वहां का स्वाध्याय हॉल छांदोग्य उपनिषद में लिखा भगवान ने बनाया हुआ है, वहां ईंट पत्थर नहीं लगे हैं, सोने से ही बना है, स्वर्ण जड़ित सारा सोने का बना हुआ हॉल है और वहां पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी और जिज्ञासुओं को बैठने के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं हैं। और वहां बैठ करके फिर वेदांत स्वाध्याय केवल जो पूर्ण वैराग्य से संपन्न अधिकारी हैं वही उनके स्वाध्याय में बैठते हैं और निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा होती है वहां। जिनके बुद्धि में संसार के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य है ऐसे सब के सब जिस स्वाध्याय में बैठे हो और वहां तत्व की चर्चा हो रही हो तो वहां पर फिर तत्वबोध निश्चित ही हो जाता है। फिर जीवन मुक्त होकर के रहता है, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होता है। इसे कहा जाता है क्रम मुक्ति। तो मनुष्य जीवन में जिनका चित्त पूर्ण वैराग्य संपन्न नहीं है, मंद वैराग्यवान जो है लेकिन आत्मजिज्ञासु हैं, उन्हें भी मुक्ति मिल जाए तो साक्षात मुक्ति नहीं तो क्रम मुक्ति मिल जाए। इस उद्देश्य से मुंडक उपनिषद में प्रणव उपासना आती है, एक ओंकार उपासना आती है, ओम इत्येवं ध्यायत आत्मानं इत्यादि वाक्य है। उस वाक्य से बताया गया है ओंकार उपासना को मुंडक उपनिषद में। वहीं पर प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते इत्यादि मंत्र भी आते हैं। उन मुंडक उपनिषद में आई हुई जो प्रणव उपासना, प्रणव उपासना के बोधक मंत्रों का व्याख्यान रूप ये चतुर्थ प्रकरण है। ये पंचम प्रकरण है आपके प्रश्न उपनिषद का। प्रश्न उपनिषद में पंचम प्रकरण मुंडक उपनिषद के प्रणव उपासना के प्रतिपादक जो जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या समझना। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते इत्यादि की उसमें बताया गया है कि ओंकार धनुष के तरह धनुष है। ओंकार उपासना का स्वरूप बताते हुए और खूब अच्छा धनुर्धारी के पास धनुष बाण हो, धनुष हो खाली और बाण न हो तो लक्ष्य का भेदन वो खाली धनुष से थोड़ी कर सकता है। लक्ष्य का वेदन तो करता है वो बाण से, वो बाण भी होना चाहिए और वो भी तीक्ष्ण बाण होना चाहिए तो लक्ष्य को ठीक से विंधता है। तो प्रणव तो धनु के तरह धनु है और शर यानी बाण माना जाता है आत्मा को। आत्मा यानी आत्मा की उपाधि जो बुद्धि, ये बुद्धि है साभास बुद्धि, उसे कहा गया आत्मा शर बाण। और वो भी बुद्धि कैसी, तो बुद्धि का एक विशेषण दिया है, बाण ऐसे ही रखा हुआ हो, जंग खाया हुआ हो और उसका जो नोक है सामने वाला वो मुंधा हुआ हो तो लक्ष्य में जाकर के भी लक्ष्य का ठीक से वेदन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे तीक्ष्ण करना होता है। ऐसे बुद्धि रूपी बाण तीक्ष्ण होना चाहिए। वो तीक्ष्ण किससे होगा तो कहा गया उपासा निशीतम, ओंकार उपासना ये बुद्धिरूपी बाण को तीक्ष्ण करने के लिए है। बुद्धिरूपी बाण की मूंधी हुई अवस्था मानी जाती है विक्षिप्त अवस्था, जो चित्त में विक्षेप है ना, यही माना जाता है कि बाण का अग्रभाग, बुद्धिरूपी बाण का अग्रभाग मुंधा हुआ है, तीक्ष्ण नहीं है। और विक्षेप रहित जो बुद्धि है वो मानी जाती है एकाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि मानी जाती है, और वो होती है उपासना से। और उस तीक्ष्ण बुद्धि रूपी बाण को ओंकार रूपी धनुष पर जब चढ़ाता है तो अप्रमत्तेन वेधव्यम, जो अप्रमादी साधक हैं, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, साधन के प्रति समर्पित हैं, कभी कर्तव्यों के प्रति प्रमाद नहीं करता,